एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यहाँ ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, मैट रिडले की द रेड क्वीन, सेक्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेचर।
बिल्कुल, ये किताब ना मानव स्वभाव की कई पहलुओं को एक अलग ही नजरिए से देखती है।
सही कहा। और ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये हमारे रिश्तों, समाज, हमारी सोच, यहाँ तक कि प्यार और सुंदरता जैसी चीजों से भी जुड़ जाती है।
हाँ, और आज के समय में जहाँ हम सब इंसान के बर्ताव को समझने में लगे, ये किताब शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। किताब एक बड़े बुनियादी सवाल से शुरू होती है कि सेक्स, मतलब लैंगिक प्रजनन, जो इतना महंगा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड,
कभी कभी खतरनाक भी,
बिल्कुल, वो आखिर है ही क्यों? अलैंगिक प्रजनन मतलब बिना साथी के बच्चे पैदा करना, वो तो ज्यादा आसान लगता है ना।
हाँ, सोचने वाली बात है।
यहीं से एंट्री होती है रेड क्वीन की।
अच्छा, वो लुइस कैरल वाली कहानी से, एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास।
वही, जहां रेड क्वीन कहती है, अरे भाई, यहां तो अपनी जगह पर बने रहने के लिए भी तुम्हें पूरी रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा।
हाँ हाँ,
तो किताब कहती है कि विकास की दौड़ भी कुछ ऐसी ही है, एक लगातार चलने वाली रेस।
दिलचस्प। तो इस रेस को समझने से पहले लेखक को जान ले थोड़ा, मैट रिडले।
जरूर। मैट रिडले वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, ऑक्सफोर्ड से जूलॉजी में डीफिल किया उन्होंने।
लेकिन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है।
नहीं, वो जाने माने विज्ञान पत्रकार भी हैं और लेखक भी। द इकोनॉमिस्ट के साइंस एडिटर रह चुके हैं, काफी अनुभवी।
उनकी खूबी क्या है, मतलब क्या चीज उन्हें खास बनाती है?
देखिए, वो विज्ञान और उसे समझाने की कला दोनों में माहिर हैं। जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन, मनोविज्ञान, बड़े मुश्किल विषय लगते हैं ये।
हाँ, आम लोगों के लिए तो रहे,
पर वो इन्हें बिल्कुल सरल भाषा में किस्सों की तरह समझा देते हैं। उनका नजरिया भी थोड़ा अलग है, तार्किक आशावादी कहते हैं उन्हें, चीजों के पीछे का तर्क ढूंढते हैं वो।
और ये भी जरूरी है शायद कि जब ये किताब आई, मतलब 1993 में,
हाँ बिल्कुल,
तब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान एक नया सा फील्ड था।
हाँ, थोड़ा विवादित भी था। रिडले ने इसे आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद की।
जैसे किन वैज्ञानिकों के काम को?
अरे, W.D. हैमिल्टन है, जिन्होंने समझाया कि रिश्तेदारी क्यों जरूरी है।
अच्छा।
जॉर्ज सी विलियम्स, जिन्होंने सेक्स पर ही सवाल उठाए।
अच्छा।
रॉबर्ट रिवर्स, जिन्होंने पेरेंट्स और बच्चों के बीच के कन्फ्लिक्ट को समझाया। इनके मुश्किल आइडियाज को रिडले में आसान बनाया।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब के बिल्कुल सेंटर में, इसका मेन मकसद क्या है?
देखिए, पहला तो ये समझाना कि ये जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्स, ये आखिर दुनिया में आया ही क्यों, विकसित क्यों हुआ। और दूसरा, इस जवाब का इस्तेमाल करके इंसान के स्वभाव की गुत्थियां सुलझाना, प्यार, जलन, बुद्धिमत्ता, ये सब।
शुरुआत कहाँ से होती है?
शुरुआत होती है एक पहेली से, सेक्स की दोगुनी लागत, मतलब टू फोल्ड कॉस्ट ऑफ सेक्स।
दोगुनी लागत, ये क्या है?
सोचिए, अगर कोई जीव बिना साथी के अपनी कॉपी बना ले, अलैंगिक रूप से,
क्लोनिंग जैसा।
हाँ, क्लोनिंग जैसा, तो वो अपने सारे जीन 100% अगली पीढ़ी में भेजता है, और साथी ढूंढने का कोई झंझट नहीं।
सही बात है।
लेकिन सेक्स में हम सिर्फ आधे जीन पास करते हैं, 50%, और साथी ढूंढना, उसे रिझाना, इसमें कितनी मेहनत, कितना टाइम, कितना रिस्क।
हाँ, ये तो है।
तो गणित के हिसाब से तो अलैंगिक जीवों को दुनिया पर छा जाना चाहिए था, सेक्स करने वाले जीवों को तो कब का हार जाना चाहिए था।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम इंसान और ज्यादातर जानवर तो सेक्स ही करते हैं, क्यों?
यही आता है रिडले का मास्टर स्ट्रोक, रेड क्वीन हाइपोथेसिस।
अच्छा, वो दौड़ वाली बात।
हाँ, रिडले कहते हैं कि सेक्स का असली फायदा है बीमारियों और परजीवियों से बचना।
पैरासाइट्स।
परजीवी मतलब बैक्टीरिया, वायरस,
हाँ,
वही सब। ये परजीवी ना लगातार हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम को तोड़ने के नए तरीके ढूंढते रहते हैं।
जैसे चोर ताला तोड़ने की कोशिश करता है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही उपमा है। अब सोचिए, अगर कोई जीव अलैंगिक है, तो उसकी सारी संतानें जेनेटिकली एक जैसी हैं, मतलब सबके शरीर का ताला एक जैसा है। अगर परजीवी ने उस ताले की चाबी ढूंढ ली, तो पूरी आबादी खत्म। लेकिन सेक्स क्या करता है? ये दो अलग लोगों के जीन मिलाता है। हर बच्चा एक नया अनोखा जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है।
मतलब हर पीढ़ी में ताला बदल जाता है।
एग्जैक्टली, हर पीढ़ी में ताले बदल जाते हैं। इससे परजीवियों के लिए कोई एक मास्टर चाबी बनाना मुश्किल हो जाता है। सेक्स हमें इस अंतहीन दौड़ में, इस रेड क्वीन रेस में बनाए रखता है।
वाह, ये तो कमाल का आइडिया है।
और किताब सिर्फ यहीं नहीं रुकती।
अच्छा, और
ये दिखाती है कि कैसे सेक्स के आने से नर और मादा में अंतर पैदा हुए, कैसे यौन चयन ने अजीब अजीब गुण पैदा किए।
यौन चयन, सेक्सुअल सिलेक्शन।
हाँ, फिर सुंदरता की हमारी समझ कैसे बनी, और सबसे मजेदार कि हमारी जो बुद्धि है, क्रिएटिविटी है, वो भी शायद इसी खेल का हिस्सा है।
हमारी बुद्धि, ये कैसे?
आएंगे इस पर। ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान होने का मतलब क्या है।
हाँ बिल्कुल। तो किताब आगे कैसे बढ़ती है, वो कोरी स्लेट वाली बात?
हाँ, ब्लैंक स्लेट, कि इंसान जन्म के समय बिल्कुल खाली होता है।
रिडले उसे चुनौती देते हैं, कहते नहीं, हमारा एक विकसित मानव स्वभाव है और उसे समझने के लिए सेक्स को समझना पड़ेगा। फिर वो दोगुनी लागत वाली पहेली सामने रखते हैं
और पुराने जवाबों को काफी नहीं मानते हैं।
हाँ, जैसे कि सेक्स खराब म्यूटेशन हटाता है या बदलते माहौल में मदद करता है। वो कहते हैं ये पूरी कहानी नहीं बताते, असली वजह रेड क्वीन है।
इसका कोई सबूत भी है?
हाँ, सबसे मजबूत सबूत आता है न्यूजीलैंड के कुछ घोंगों से। पोटामोपर्गस एंटीपोडारम नाम है उनका।
घोंगे?
उनसे
क्या पता चला?
बड़ी दिलचस्प स्टडी थी। देखा गया कि जिन तालाबों में परजीवी ज्यादा थे,
हाँ,
वहां के घोंगे ज्यादातर सेक्सुअली प्रजनन कर रहे थे।
अच्छा।
और जहां परजीवी कम थे, वहां वो मजे से क्लोनिंग कर रहे थे, मतलब एसेक्सुअल प्रजनन।
अरे वाह, ये तो सीधा कनेक्शन दिखाता है।
बिल्कुल, कि परजीवी ही सेक्स को फायदेमंद बना रहे हैं। सेक्स से जो जेनेटिक वैरायटी आती है, वो कुछ बच्चों को परजीवियों से बचा लेती है।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? आपने कहा था कि हमारे शरीर के अंदर भी संघर्ष चलता है।
हाँ, ये और भी गहरा जाता है। रिडले बताते हैं कि संघर्ष सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, हमारी अपनी कोशिकाओं के अंदर भी है।
कोशिकाओं के अंदर कैसे?
खास तौर पर न्यूक्लियस के डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए के बीच। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ माँ से मिलता है, याद है?
हाँ हाँ।
तो शायद दो लिंगों का बनना, नर और मादा, इसी अंदरूनी जेनेटिक झगड़े को सुलझाने का तरीका था।
ओह, और इसी से वो बड़ा फर्क पैदा हुआ, अंडे और शुक्राणु वाला।
बिल्कुल, मादा का बड़ा पोषक अंडा, कम संख्या में, ज्यादा निवेश, और नर के छोटे फुर्तीले लाखों करोड़ों शुक्राणु, ज्यादा संख्या, कम निवेश प्रति शुक्राणु।
और यही फर्क आगे की कहानी तय करता है।
हाँ, यही विषमता, यही एसिमेट्री नर और मादा की अलग अलग रणनीतियों और उनके बीच के टकराव की जड़ है।
तो यहीं से बात यौन चयन यानी सेक्सुअल सिलेक्शन पर आती है।
बिल्कुल, अब फोकस इस पर है कि सेक्स होने के बाद क्या होता है। ये सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है।
तो क्या है?
ये है रिप्रोडक्शन ऑफ द सेक्सिएस्ट, मतलब जो सबसे आकर्षक है वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा।
इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो मोर की पूंछ है।
हाँ वही, वो पूंछ जीने में तो मुश्किल पैदा करती है, भारी है, शिकारियों से बचना मुश्किल,
फिर भी होती है।
हाँ, मोरनी को पसंद आती है। क्यों? इसके पीछे दो मुख्य थियरी हैं। एक है फिशर का रनअवे सिलेक्शन।
रनअवे मतलब भागता हुआ।
हाँ, मतलब एक बार कोई चीज आकर्षक मान ली गई तो वो पसंद और वो गुण दोनों बढ़ते ही जाते हैं, एक दूसरे को भगाते हुए।
अच्छा, और दूसरी?
दूसरी है जहावी का हैंडीकैप सिद्धांत, हैंडीकैप प्रिंसिपल।
हैंडीकैप मतलब बोझ?
हाँ, कि मोर की पूंछ जैसी महंगी बोझिल चीज असल में अच्छी सेहत और अच्छे जीन्स का ईमानदार सिग्नल है।
ईमानदार सिग्नल
मतलब सिर्फ एक बहुत सेहतमंद ताकतवर मोर ही इतनी बड़ी पूंछ का बोझ उठा सकता है और फिर भी जिंदा रह सकता है। तो पूंछ देखकर मोरनी असल में उसके अच्छे जीन्स को चुन रही है।
वाओ, ये तो बहुत दिलचस्प है।
अब रिडले इसे इंसानों पर लागू करते हैं।
अच्छा, हम इंसानों पर कैसे?
वो बैटमैन के सिद्धांत का हवाला देते हैं कि नर की प्रजनन सफलता अक्सर साथियों की संख्या पर निर्भर करती है।
और मादा की?
मादा की सफलता निर्भर करती है बच्चों को पालने के लिए जरूरी संसाधनों पर।
तो इससे हितों का टकराव होता है,
जाहिर है। रिडले कहते हैं कि पुरुषों में औसतन जो बहुगामी होने की प्रवृत्ति दिखती है या स्टेटस के लिए जो होड़ दिखती है, वो शायद इसी टकराव से जुड़ी है।
लेकिन फिर दुनिया भर में एकांगी विवाह मोनोगैमी क्यों दिखती है ज्यादातर?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। रिडले का मानना है कि ये अक्सर मादा की रणनीति का नतीजा होता है।
मादा की रणनीति कैसे?
वो अच्छे जीन वाले आकर्षक साथी और अच्छा प्रोवाइडर यानी संसाधन देने वाले साथी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है।
तो सामाजिक मोनोगैमी एक तरह का समझौता है?
हाँ, एक तरह का समझौता जो दोनों के हितों को कुछ हद तक साधता है, पर यह बहस आसान नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब आगे दिमाग पर भी बात करती है, स्त्री पुरुष के दिमाग में अंतर।
हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। रिडले मानते हैं कि अलग अलग एवोल्यूशनरी दबावों की वजह से औसतन कुछ मानसिक झुकाव अलग हो सकते हैं।
जैसे?
जैसे पुरुषों में स्थानिक तर्क क्षमता, मतलब स्पेस को समझने की क्षमता, शायद शिकार या रास्ता खोजने की वजह से बेहतर हो, और महिलाओं में मौखिक प्रवाह या सामाजिक समझ, शायद बच्चों को पालने या सोशल नेटवर्क संभालने की वजह से।
लेकिन वो जोर देते हैं कि ये सिर्फ एवरेज है।
बिल्कुल, ये किसी एक व्यक्ति पर लागू होने वाली नियम नहीं है, स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए।
सही बात है। और सुंदरता, क्या वो सिर्फ कल्चर की देन है?
रिडले कहते हैं नहीं, सिर्फ कल्चर नहीं, सुंदरता के पीछे गहरे जैविक कारण भी हैं। वो अक्सर स्वास्थ्य, जवानी, उर्वरता का संकेत होती है,
जैसे चेहरे की सिमेट्री या वो कमर कूले का अनुपात।
हाँ, ये सब योग्य और स्वस्थ साथी पहचानने के लिए हमारे दिमाग में बने गहरे तंत्र हैं। ये सिर्फ पसंद नापसंद का मामला नहीं है।
और अब आते हैं उस सबसे विस्फोटक आइडिया पर, हमारा दिमाग।
हाँ, किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार शायद यही है
कि हमारा ये बड़ा सा दिमाग, हमारी भाषा, संगीत, कला, ह्यूमर, ये सब क्या है?
रिडले कहते हैं ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के टूल नहीं है।
हाँ।
ये हमारी प्रजाति की मोर की पूंछ है।
क्या मतलब?
हमारा दिमाग मोर की पूंछ है।
हाँ।
इन्हें यौन चयन ने तराशा है। मजेदार बातें करना, कहानी सुनाना, पेंटिंग बनाना, गाना गाना, अच्छा मजाक करना,
ये सब
अपनी दिमागी फिटनेस, अपनी जेनेटिक क्वालिटी दिखाने के तरीके हैं।
हाँ।
हमारा दिमाग सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बना,
बल्कि साथी को रिझाने के लिए भी बना है।
हाँ, आकर्षित करने, इम्प्रेस करने के लिए भी। ये सोची हिला देती है।
सच में दिमाग घूम गया ये सुन के,
है ना? तो चलो इस पूरी चर्चा के कुछ मेन पॉइंट्स या थीम को समेटते हैं।
हाँ जरूर। पहला तो वही रेड क्वीन वाला आइडिया।
बिल्कुल, रेड क्वीन सिद्धांत कि जीवन कोई सीधी चढ़ाई नहीं, एक ट्रेडमिल है, सिर्फ अपनी जगह बनाए रखने के लिए भागते रहना पड़ता है,
खासकर बीमारियों और परजीवियों के खिलाफ।
हाँ, और सेक्स हमें इसी दौड़ में टिकाए रखता है। अपनी रोज की जिंदगी में भी तो ऐसा ही है,
है ना?
कंपटीशन में बने रहने के लिए लगातार सीखते रहना पड़ता है।
सही बात है। दूसरी बड़ी थीम,
यौन चयन की ताकत, सेक्सुअल सिलेक्शन। ये कभी कभी नेचुरल सिलेक्शन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है,
मतलब जीने के संघर्ष से भी ज्यादा।
हाँ, जब बात आती है मुश्किल गुणों को बनाने की, जैसे मोर की पूंछ या शायद हमारी बुद्धि भी, बहुत कुछ जो हम करते हैं वो सिर्फ जीने के लिए नहीं,
साथी पाने के लिए।
हाँ, साथी पाना, उसे इम्प्रेस करने के लिए। आज का सोशल मीडिया देखो कितना कुछ दिखावा है।
हाँ, वो डिजिटल मोर की पूंछ
कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, नर और मादा की रणनीतियों का संघर्ष और समझौता।
वो अंडे और शुक्राणु वाला फर्क।
हाँ, उसी से शुरू होता है ये टकराव। हमारे रिश्तों में, समाज के नियमों में, शादी जैसी संस्थाओं में दिखता है।
भारत में भी हम देखते हैं ये।
रिश्तों को लेकर बदलती सोच, शादी को लेकर उम्मीदें, ये सब इसी पुरानी रस्साकशी का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। और चौथी थीम जो आपको बहुत पसंद आई थी।
हाँ, कि बुद्धि, क्रिएटिविटी, ह्यूमर, ये सब एक तरह का प्रदर्शन भी है।
अपनी फिटनेस दिखाने का तरीका।
हाँ, ये समझाता है कि हम क्यों किसी मजेदार इंसान या किसी कलाकार की तरफ खींचते हैं। शायद हम अनजाने में उनकी अच्छी जेनेटिक क्वालिटी को सराह रहे होते हैं।
है ना दिलचस्प? चलो अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जो किताब की जान है, वो कोट्स जिन्हें हम अपने शब्दों में कह सकते हैं।
हाँ जरूर।
पहला,
जिंदा रहने के लिए प्रजातियों को लगातार बदलना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों से पीछे ना रह जाने के लिए। यही रेड क्वीन की दौड़ है।
ये विकास को एक संघर्ष की तरह दिखाता है, मंजिल की तरह नहीं।
बिल्कुल।
दूसरा, सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, ये जीन्स को मिक्स करने का तरीका है ताकि नए जेनेटिक ताले चाबी बने। इससे परजीवियों का काम मुश्किल हो जाता है।
ये सेक्स का लॉजिक एकदम साफ कर देता है, विविधता ही बचाव है।
तीसरा और सबसे सोचने पर मजबूर करने वाला, इंसानी दिमाग अपनी भाषा, कहानी, कला, संगीत के साथ सिर्फ जीने का साधन नहीं है, ये हमारी प्रजाति की मोर वाली पूंछ है, साथी को रिझाने के लिए विकसित हुआ।
ये हमारी संस्कृति को हमारी बायोलॉजी से जोड़ता है। बड़ा आइडिया ये।
हाँ, और चौथा, मर्द और औरत के बीच का संघर्ष कोई आज की बात नहीं, ये उनकी अलग जैविक रणनीतियों से पैदा हुआ पुराना खेल है। हमारे सामाजिक जीवन के कई नियम इसी खेल के समझौते हैं।
ये रिश्तों के तनाव को एक गहरी एवोल्यूशनरी जड़ देता है।
तो सवाल ये है कि इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना?
हाँ, ये जानना जरूरी है। पहला तो शायद रिश्तों को समझने में मदद मिल सकती है।
कैसे?
जैसे आकर्षण, वो केमिस्ट्री वाली बात, क्या वो इम्यून सिस्टम मैचिंग है, या जलन क्यों होती है, कमिटमेंट को लेकर मर्द और औरत औसतन अलग क्यों सोचते हैं, ये एक फ्रेमवर्क देता है।
सहानुभूति बढ़ाने में मदद कर सकता है।
हाँ, शायद दूसरों के व्यवहार को थोड़ा बेहतर समझ पाएं, भले ही हम सहमत ना हो। दिखावा क्यों करते हैं, कोई क्यों बहुत मजेदार बनने की कोशिश करता है,
ये सब अपनी फिटनेस दिखाने के तरीके हो सकते हैं।
हाँ, आज के जमाने की मोर की पूंछ, इसे समझकर हम अपने और दूसरों के दिखावे के पीछे की वजह शायद बेहतर समझ सकते हैं।
तीसरा, सुंदरता पर नजर बदल सकती है।
कि ये सिर्फ कल्चर नहीं है, इसके पीछे स्वास्थ्य और अच्छे जीन्स के सिग्नल भी हो सकते हैं।
हाँ, क्यों कुछ चेहरे या फिगर दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं।
चौथा, स्वास्थ्य और विविधता का महत्व।
रेड क्वीन सिद्धांत हमें समझाता है कि फ्लू के टीके क्यों बदलने पड़ते हैं,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है,
खेती में एक ही फसल क्यों खतरनाक है,
विविधता ही बचाव है,
और शायद सबसे जरूरी आत्म जागरूकता।
हाँ, अपनी इच्छाओं, जलन, महत्वाकांक्षा के पीछे की गहरी वजहों को पहचानना,
ताकि हम खुद से पूछ सके क्या ये फीलिंग अभी के लिए लॉजिकल है या ये कोई पुरानी स्क्रिप्ट है।
इससे हम अपने आवेगों को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, सोच समझकर फैसले ले सकते हैं।
मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही रेड क्वीन वाली है, जीवन एक लगातार दौड़ है और डाइवर्सिटी, विविधता ही हमें इसमें बनाए रखती है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, हर चीज पर लागू होता है।
और मेरे लिए वो दिमाग वाला आइडिया कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारा ह्यूमर, हमारी कला, ये सब भी शायद यौन चयन का नतीजा है। ये हमारी संस्कृति को हमारी बायोलॉजी से जोड़ता है, जो एक तरह से हैरान करने वाला भी है और बहुत दिलचस्प भी।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, जरूर।
अगर हमारे बर्ताव का, हमारी संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा इस पुराने एवोल्यूशनरी खेल यानी यौन चयन से बना है, तो फिर जीवन के उन हिस्सों का क्या जिन्हें हम सबसे तर्कसंगत या आध्यात्मिक मानते हैं,
क्या वो भी किसी ना किसी तरह इसी खेल का हिस्सा है? सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।